अगला शीर्षक है प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा रचित रसिक प्रिया। रसिक प्रिया का निर्माण करते समय केशव आचार्य और कवि दोनों थे। आगे चलकर उनका आचार्य पक्ष प्रबल होता गया। रसिक प्रिया और रामचंद्रिका को देखकर सहसा कोई विश्वास नहीं कर पाता कि एक ही की दोनों रचनाएं हैं। संस्कृत प्रबंध काव्यों की परंपरा पहले ही पुष्ट हो चुकी थी। संस्कृत में अमरुक शतक जैसे मुक्तक काव्य उतने नहीं हैं। हिंदी में केशवदास ने रसिक प्रिया में अपने कवि रूप का जैसा निखार दिखाया वह हिंदी की प्रभुत परिमाण में अपनी ही काव्य संपत्ति है। जहाँ कहीं संस्कृत के उदाहरणों का सहारा भी लिया गया है वहाँ भी नूतन भंगिमा या ग्रंथन कौशल है। इसलिए केशव के संबंध में यह सत्य नहीं भूलना चाहिए कि उनमें कवित्व की सरसता मुक्तक के क्षेत्र में पूरी थी। यदि कुछ विशेष प्रकार के विनियोग की प्रतिज्ञा उन्होंने ना की होती तो रामचंद्रिका में उनका कवि रूप उतना आवृत्त ना होता जितना शास्त्र स्थिति संपादन के कारण हो गया है। विषय विमर्श। रसिक प्रिया में 16 प्रभाव हैं। कदाचित उसके षोडश श्रृंगार का ध्यान रखकर इतने प्रभाव रखे गए हों। प्रत्येक श्रृंगार का एक प्रभाव, श्रृंगार का प्रभाव ही पड़ता है। प्रत्येक प्रभाव के उपसंहार में आगे के प्रभाव का वर्ण्य विषय सूचित कर दिया गया है। प्रथम प्रभाव में सबसे पहले गणेश की वंदना है। सामाजिक प्रवाह का ध्यान जैसा मानस में तुलसीदास ने रखा वैसा ही केशवदास ने अपने साहित्यिक ग्रंथों में इसी से गणेश जी की वंदना सर्वप्रथम की। दूसरी वंदना श्री कृष्ण की है। इन्हें नवरस में कहने में केशव ने अधिक पांडित्य का प्रदर्शन किया है। हिंदी में श्रृंगार के आलंबन श्री कृष्ण ही हो गए हैं। रसमात्र के आलंबन वही है। हिंदी की प्रथा के अनुसार इसके अनंतर आश्रयदाता या राजवंश का वर्णन है। निर्माण हेतु स्थान और समय का उल्लेख है, फिर नवरस का नामोल्लेख, उनमें श्रृंगार की श्रेष्ठता और श्रीकृष्ण के नायकत्व का कथन है, फिर श्रृंगार के संयोग वियोग भेद और प्रकाश प्रच्छन्न भेद हैं तथा श्रीकृष्ण और राधिका दोनों के चरित्र में इनके उदाहरण दिखाए गए हैं। द्वितीय प्रभाव में नायक लक्षण कथित हैं। इनमें अनुकुलादि और उनके प्रकाश प्रच्छन्न भेद के विस्तार से उदाहरण हैं। इस प्रभाव में 8 गांठ का वर्णन है। पृष्ठ के प्रसंग में वे लिखते हैं, मनसा वाचा कर्मना भी हंसनी चितवनी लेखी चलनी चातुरी आतुरी आठों गांठ बिसेखी। दृष्ट नायक सर्वात्मना दृष्ट होता है। उसकी 8 रूपों में अभिव्यक्ति होती है, मन वचन कर्म विहसना चितवन चाल चातुर्य चातुरता। इसका मुहावरे के रूप में कवि ने प्रयोग कर दिया है हरि आठहु गांठ अठाए। सामान्यतया 8 गांठ का अर्थ शरीर की 8 संधियां किया जाता है, पर केशव ने उसके विशेष अर्थ किए हैं। तृतीय प्रभाव में सबसे पहले नायिका जाति का वर्णन कामसूत्र के आधार पर किया गया है। तत्वतः कामसूत्र और साहित्य सूत्र में अंतर है। साहित्य काम के उसी अंश को ग्रहण करता है जिसका संबंध मनोवृत्ति से होता है, इसलिए उसमें काम के उन विवरणों का उल्लेख जो शरीर से संबंध रखने वाले हैं ग्राह्य नहीं हुए। साहित्य अपेक्षाकृत सूक्ष्म तत्व से संबंध रखता है। साहित्य में मन काम का पिता माना जाता है, इसलिए यूं कह सकते हैं कि साहित्य बड़ों से अपना संबंध जोड़ता है। बाल बच्चों में संलाप अपनी गंभीरता के विरुद्ध समझता है। केशव ने इतना अच्छा किया कि नायिकाओं के इन भेदों के साथ पुरुषों के भी भेद नहीं कहे। कदाचित उनका लक्ष्य यह था कि पद्मिनी स्त्रियों का उल्लेख साहित्य में हुआ करता है, इसलिए स्वरूप बोध के लिए उनका संक्षिप्त विवरण दे देना चाहिए। जाति वर्णन के अनंतर मुग्धा का विचार है। नायिकाओं के प्रकार भेद कई दृष्टियों से किए जाते हैं। पद्मिनी आदि जाति भेद है, मुग्धा आदि अवस्था भेद है, स्वकिया परकिया आदि धर्मानुसार प्रकार हैं। मुग्धा के जो विशेषण नववधू आदि कहे गए हैं वे उसके प्रकार या भेद नहीं है। नायक के दक्ष आदि विशेषणों की भांति ये विशेषण है। इसमें मुग्धा के सुख का वर्णन भी इन्होंने किया है। वह किसी की शिक्षा से वांछित सुखात्मक व्यवहार नहीं करती, उसके साथ छल बल अनुचित है, उससे सुख शोभा को क्षति पहुंचती है। इसमें मध्या और प्रौढ़ा के विशेषण का गुण मुग्धा की ही भांति विस्तार से कथित है, पर बहिरति और अंतरति के उल्लेख कामशास्त्र के ग्रंथों से ही उठाकर रखे गए हैं। मध्या में सुरतांत वर्णन साहित्य में परंपरा मुक्त होने के कारण कदाचित रति के स्वरूप बोध के लिए आचार्य वर ने रख दिया है, जो साहित्य के सूक्ष्म स्वरूप के विरुद्ध है। इसी के अंतर्गत षोडशा श्रृंगार भी कवित है जो पारंपरिक है। चतुर्थ प्रभाव में दर्शन का विचार है। इस संबंध में ध्यान देने योग्य यह है कि हिंदी में श्रवण दर्शन भी चल पड़ा, जबकि वह दर्शन से संबद्ध नहीं है। श्रृंगार तिलक में दोनों को पृथक ही कहा गया है। दर्शनाश्रवणा द्वापि कामार्ते भवतो यथा साक्षित्रे तथा स्वप्ने तस्य स्यादृशनम त्रिधा देशे काले च भाग्याम च श्रवणम चास्य तद्यता। रुद्र ने इंद्रजाल को भी वाक्य साथ जोड़ा है। साक्षात चित्रे स्वप्ने स्यादर्शमेव मिंद्रजाले वा देशे काले भंग्या साधु तदा क्रीणनम च स्यात्। उज्ज्वल नीलमणि में भी दर्शन और श्रवण पृथक हैं। साक्षात कृष्णस्य चित्रे च स्यासत्व स्वप्नादौ च दर्शनम वरिन्द दूति सखी वक्त्राद गीता देश च श्रुतिर्भवेत। हिंदी में श्रवण दर्शन करके दर्शन के ही चार भेद कर दिए गए हैं। यहाँ दर्शन शब्द व्यापक कर दिया गया। श्रवण द्वारा प्रिय गुणादि का कीर्तन सुनने पर भी उसके रूप का आनयन होता है, इसी से श्रवण दर्शन का ग्रहण किया गया है। पंचम प्रभाव दंपत्ति चेष्टा का वर्णन है। जैसा कहा जा चुका है कि इन्होंने अपेक्षित लक्षण आदि का नियोजन और साथ ही वांछित विस्तार करने का पूरा प्रयास किया है। प्रेम की अभिव्यक्ति के उपाय का नाम चेष्टा है। प्रिया के अन्यत्र देखने पर उसकी ओर देखना, उसके देखने पर अन्यत्र देखना आदि में केशव ने विस्तार किया। कबहू त्रुटि कंडू करे आरस सौ एडाई केशव दास विलास सौ बार बार जमुहाई। यह उद्भावना केशव की नहीं है, पारंपरिक है, श्रृंगार तिलक में नहीं है। केशव ने अवधानता पूर्वक आकलन किया है। ठीक इसी प्रकार स्वयं दूतत्व का प्रसंग वहां न होने पर भी नियोजित किया है। इस प्रभाव में उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि वैश्या का वर्णन क्यों नहीं किया गया। और जो तरुणी तीसरी क्यों बरनो यही ठोर रसमे बिरस न बरनिय कहत रसिक सिरमौर। शास्त्रीय दृष्टि से परकिया और सामान्य में रसाभास मानते हैं, पर जैसा पहले कह आए हैं परकिया भाव भाव भक्ति प्रवाह में साधना की दृष्टि से ग्राह्य हो गया था, इसीलिए उसका तो कुछ विवेचन इन्होंने कर दिया, पर सामान्य को रसाभास भी नहीं विरस कहकर परित्यक्त कर दिया। षष्ठ प्रभाव में भाव का विचार है। श्रृंगार तिलक में यह विषय नहीं वर्णित है। भाव का लक्षण इन्होंने यूं किया है। आनंद लोचन बचन मग प्रगटत मन की बात ताही सौ सब कहते हैं भाव कविन के तात। इसमें मन की बात अर्थात मनोविकार को भाव कहा गया है, पर इस भाव के पांच प्रकार यूं कह गए हैं। भाव सुपंच प्रकार के सुनी विभाव अनुभाव थाई सात्विक कहते हैं व्यभिचारी कविराव। विभाव और अनुभाव को भी भाव कहना शास्त्रीय नहीं है। स्थाई भाव व्यभिचारी और सात्विक भाव को तो रस तरंगिणीकार भाव कहते हैं। रसानुकूलो विकारो भावो विकारो अन्याथा भाव विकाराश्च द्विधा आंतर अंतरस्य शरीर से अंतरो पी द्विधा स्थायी भावो व्यभिचारी भावश्च शरीरास्तु सात्विका भाव देह। रस के अनुकूल विकार को भाव कहते हैं। विकार का अर्थ है परिवर्तन। यह परिवर्तन दो प्रकार का होता है, अंतःकरण का और शरीर का। आंतरिक परिवर्तन दो प्रकार का होता है, स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव। शारीरिक परिवर्तन सात्विक भाव आदि होते हैं। यह नहीं समझना चाहिए कि देह विकार के लिए भाव पद का व्यवहार गौण है। भेदकता है अन्य भावों को अपने शासन में रख सकना, देह विकार नहीं। स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव में इतना ही अंतर है कि स्थायी भाव चरम समय पर्यंत स्थिर रहता है, इसी से स्थायी कहलाता है। दूसरा अस्थिर होता है। इस प्रकार स्थायी भाव मनोविकार में प्रधान होता है। प्रधान भाव होने के कारण यह सामाजिक के हृदय में उद्भुत होकर रस चवरना करता है। व्यभिचारी या संचारी भाव ऐसा नहीं कर पाता, पर विभाव भाव नहीं है। जो भाव को विशेषतया उत्पादित करते हैं वे विभाव कहलाते हैं। जो रसों को अनुभावित करते हैं अनुभव में लाते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। विभाव भाव के कारण होते हैं और अनुभाव उसके कार्य। कदाचित किसी के कारण और कार्य में भी उसका अंश होता है, ऐसा मानकर उन्हें भी भाव ही कह दिया गया है। विभाव का लक्षण करते हुए केशव उन्हें रस भाव का कारण कहते हैं। जिनते जगत अनेक रस प्रगट होन अन्यास, तीन सौ विमति विभाव कही बरनत केशव दास। विभाव के दो यथा शास्त्र ही हैं, आलंबन और उद्दीपन। इनमें आलंबन का लक्षण यह है, जिन्हें अतन अवलंबई ते आलंबन जानी, जिनते दिपति होती है ते उद्दीप्त बखानी। यहाँ अतन शब्द विचारणीय है। यदि आलंबन का लक्षण सभी रसों के अनुकूल माना जाए तो इसका अर्थ काम करने में बाधा है, तब इसका अर्थ अशरीरी रस भाव करना चाहिए। पर केशव ने इसके अनंतर आलंबन स्थान और उद्दीपन का जो वर्णन किया है, वहाँ श्रृंगार रस के ही आलंबन उद्दीपन कथित हैं। इसीलिए जान पड़ता है कि इन्होंने काम अर्थ में ही इसका व्यवहार किया है। आलंबन स्थान वर्णन भी ध्यान देने योग्य है। दंपति जोवन रूप जाति, लच्छन जुत सखीजन, कोकिल कलित बसंत फूल, फल दल अति उपवन। जलचर जलजुत अमल कमल, कमला कमला कर, चातक मोर सुशब्द तड़ित, धनु अम्बुद अंबर। शुभ सेज दीप सौगंध, गृह पान गान परिधान मनी, नव नृत्य भेद बिनादि, रव आलंबन केशव बरनी। इसमें दंपत्ति तो अवश्य श्रृंगार रस के आलंबन है, पर सखीजन कोकिलादि की गणना उद्दीपन में ही की जाती है। उद्दीपन दो प्रकार के होते हैं, संबद्ध और तटस्थ। आलंबन से संबद्ध उद्दीपन के अंतर्गत कुछ तो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, कुछ शरीर की साज सज्जा, कुछ सयादी उपकरण, कुछ सहायक सखी आदि। तटस्थ के अंतर्गत प्राकृतिक स्थिति होती है। इनमें से केशव ने शारीरिक चेष्टा को ही उद्दीपन माना है। अवलोकन आलाप परिरंभन नखरद दान, चुंबनादि उद्दीप्त हैं मर्दन परस प्रवान। पर अन्य सभी उद्दीपनों को उन्होंने आलंबन ही कहा। इसका कारण कदाचित यह है कि प्रकृत आलंबन के अतिरिक्त स्थिति भेद से ये भी आलंबन हो सकते हैं। इन्हें उद्दीपन कह देने से इनकी गणना फिर आलंबन के अंतर्गत नहीं हो सकती, पर ऐसा कर देने से इनका उद्दीपन होना स्पष्ट लक्षित नहीं होता। हिंदी में प्राकृतिक दृश्य आलंबन होते हैं, यह केशव दास ने ही कहा है। यह कथन कम महत्व का नहीं है। आलंबन उद्दीप्त के जो अनुकरण बखान, तय कहिए अनुभाव सब दंपति प्रीति विधान। इसमें अनुकरण शब्द अनुगमन अर्थ में प्रयुक्त जान पड़ता है। अनुभाव शब्द के दो अर्थ किए जाते हैं, जो भावादि का अनुभव कराते हों अथवा जो भाव के पीछे प्रकट होते हों। यहाँ दूसरा अर्थ लिया गया है। व्यभिचारी भाव के नाम कथन में केशव ने परंपरा गृहित 33 संचारियों के प्रसंग में जो दो शब्द ऐसे रखे हैं जिनसे भ्रांति हो सकती है, एक शब्द विवाद है और दूसरा आदि। पहला, गर्व हर्ष आवेग पुनि निंदा नींद विवाद। दूसरा, उन्माद मरण अवहित है व्यभिचारी जतुआधि। यदि विवाद में कोई नया संचारी माना जाए तो तर्क और उसमें कोई भेद नहीं होगा, इसीलिए नींद विवाद समस्त पद जान पड़ता है। नींद विवाद का निद्रा का बखेड़ा, निद्रा की बात अर्थ है। ध्यान देने योग्य है कि दोनों शब्द तुकांत में आए हैं। ये तुकांत के अनुरोध से प्रयुक्त हैं, इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे विवाद को निद्रा के साथ जोड़ लेने से स्थिति ठीक हो जाती है, वैसे ही जुताधि को चाहे तो अवहित के साथ जोड़ सकते हैं, अन्यथा उस दोहे के प्रथम दल में व्याधि है उसी से इसे जोड़ लें। आधि व्याधि को एक माने, यह जुत शब्द आधि को किसी से जोड़ने के लिए प्रयुक्त है, उसकी स्वतंत्र सत्ता के दोतन के लिए प्रयुक्त नहीं जान पड़ता। शारीरिक क्लेश को व्याधि और मानसिक क्लेश को आधि कहते हैं। बाह्य और आभ्यंतर भेद से ही एक ही क्लेश की द्विधा स्थिति हो जाती है। हाव का लक्षण उन्होंने यह किया है, प्रेम राधिका कृष्ण को है ताते श्रृंगार, ताके भाव प्रभाव ते उपजत हाव विचार। यहाँ भाव प्रभाव शब्द विचारणीय है। राधा कृष्ण के प्रेम से श्रृंगार होता है, उसके भाव के प्रभाव से हाव होता है। भाव का अर्थ या तो स्थिति माने अथवा मनोविकार माने। नाट्य शास्त्र में हाव दूसरे ढंग से माना गया है। हिंदी में आलंबनगत अलंकार को हाव कहते हैं, वाणी से, अंग से और सत्व से। सत्व देहात्मक होता है, सत्य से भाव और भाव से हाव, हाव से हेला होती है। देहात्मकम भवेत सत्वम सत्वात्, भावः समुत्थितः भावात् समुत्थितो हावो हावा द्वैधा समुत्थिता। वही नाच रसाश्रय अलंकारों का उल्लेख भी है। मुख और शरीर में यौवन के समय होने वाले स्त्रियों के शारीरिक विकार या चेष्टा का नाम अलंकार है। अलंकारास्त अलंकारास्तु नाट्यस्य या नाट्य रसाश्रयः यौवने व्याधिका स्त्रीणाम विकारा वक्त्र गात्रजः। ये तीन प्रकार के हैं अंगज, स्वाभाविक और अयत्नज। अंगज 3, स्वाभाविक 10, अयत्नज 7। भाव, हाव और हेला, ये तीन अंगज होते हैं। यहाँ भाव का अर्थ है काम विकार। अल्पसंभोग, इच्छा, प्रकाशक, भुनेद्रादि विकार को भाव के हाव कहते हैं। जब विकार बहुत स्फुट रूप में प्रकट हो तो उसे हेला कहते हैं। ये अंगज कहलाते हैं अंग या शरीर से प्रकट होने के कारण। स्वाभाविक 10 होते हैं, लीला, विलास, विक्षित, विभ्रम, किलकिंचित, मोटाइत, कुट्टमित, विभोक, ललित, विहृत। ये स्वभाव सिद्ध होते हुए भी कृति साध्य होते हैं, यत्नज होते हैं। स्त्रियों में स्वाभाविक सात्विक अलंकार इनके अतिरिक्त आच और हो सकते हैं, मद, तपन, मुग्ध, विक्षेप, कुतूहल, हसित, चकित तथा केली। अयत्नज 7 होते हैं, शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य और धैर्य। अंगज और अयत्नज ये 10 पुरुषों में भी हो सकते हैं, किंतु विशेष शोभा कारक होते हैं नायिकाओं में ही। केशव ने उपर्युक्त 10 स्वाभाविक अलंकारों के अतिरिक्त हाव शीर्षक के अंतर्गत हेला, मद और बोधक को ग्रहण किया है। इस प्रकार इन्होंने कुल 13 हाव माने हैं। हावों की ऐसी कल्पना रसतरंगिणी से चली है, उसमें उक्त 10 स्वभावज अलंकारों को हाव नाम दिया गया है। हिंदी में हेला को भी उसी में मिला लिया गया है। पूर्वोक्त अतिरिक्त 8 स्वभावज अलंकारों में से हिंदी वाले कुछ को या सभी को भाव के अंतर्गत करके रखते हैं। बोधक हाव का वर्णन सबसे प्रथम हिंदी में इन्होंने ही किया है। गूढ़ भाव को बोध जहाँ केशव और ही होई, तासों बोधक हाव सब कहत सयाने लोई। कोई कोई इसे बोध कहते हैं। भिखारीदास ने रस सारांश में बोधक को क्रियाचातुर्य कहा है। पद्माकर जगत विनोद में उसका लक्षण यूं देते हैं, ठाने किया कचुतीय पुरुष बोधित करचु भाव, रस ग्रंथम में कहते हैं तासो बोधक हाव। मोग्ध के प्रतिपक्ष में चातुर्य सूचक बोधक की कल्पना की गई है। दास ने श्रृंगार निर्णय में भरत कथित 10 स्वाभाविक अलंकारों में ही अन्य अतिरिक्त स्वभावज अलंकारों को अंतर्भूत करने का प्रयास किया है। इस प्रसंग में दूसरी विचारणीय स्थिति यह है कि स्वभावज अलंकारों को इन्होंने श्रीकृष्ण में भी माना है। इस संबंध में रसतरंगिणीकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, नारियों में ये स्वाभाविक होते हैं पर पुरुषों में औपाधिक। नारीणाम श्रृंगार चेष्टा हावः स ज स्वभावजो नारीणाम ननु विभोक विलास विक्षिते विभ्रमा पुरुषणापि संभवन्तिति चेतः सत्यम तेषां त्वपाधिका स्वभावज स्त्रीणामेव नन्मेव यदि तासां सदैव ते कथं न भवन्तिति चेतस्यम। उद्दीप कान्व्या व्यतिरेकाभ्याम नायिका नाम हावा विभाव तीरोभावावित। रसतरंगिणी में लीला, विलास, विक्षिप, विभ्रम, ललित को शारीरिक, मोहायित, कुट्टुमित, विभोक, वृहत को आंतरिक और किलकिंचित को उभय संकीर्ण कहा है। साथ ही इन सबके विभाव और अनुभाव का भी उल्लेख विस्तार से किया है। जैसे लीला के संबंध में वे लिखते हैं, प्रिया भूषण वचनाधनुकृति लीला तज्ञ विभाव सखी कौतुक कलाप अनुभाव प्रिय परिहास। भोजराज के श्रृंगार प्रकाश में इसका अत्यधिक विस्तार है। उन्होंने अनुभाव के अंतर्गत ही इन्हें रखा है। रूप गोस्वामी ने भी अनुभाव के भीतर ही इन्हें रखा है। भोजराज ने अनुभाव का लक्षण ही यो किया है, इदानीमनुभाव व्याख्या श्याम तत्र विभावे प्रबुद्ध संस्कारस्य नायिका दय स्मृतिच्छाद्वैस्वरत्न जन्मानः मनोवाग बुद्धि शरीरारंभा ते अनुभूयमान त्वाद रत्यादि नाम अनंतर भावनाच्य अनुभावः। इस प्रकार मन, वाणी, बुद्धि और शरीर के आरंभ अनुभाव हैं। मन आरंभ में भाव, हाव, हेला, शोभा, कांति, उद्दीप्ति, माधुरी, धैर्य, प्रागल्भ्य, औदार्य, स्थैर्य और गांभीर्य हैं। वागारंभ में है आलाप, प्रलाप, विलाप, अनुलाप, संलाप, अपलाप, संदेश, अतिदेश, निर्देश, उपदेश, अपदेश और व्यपदेश। बुद्ध्यारंभ भी 12 है, पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, लाटिया, रीतियां, भारती, आरभटी, केसिकी, सात्विकी, वृत्तियां और पौरस्त्या, उड्र माग्धी दाक्षिणित्या और आवंत्या शरीरारंभ में लीला विलास विच्छति विभ्रम किलकिंचित मोट्टायित कुट्टुमित विबोक ललित विरहित क्रीडित और केली का ग्रहण है। उज्ज्वल नीलमणि में वृहित के स्थान पर विकृत नाम है। हीमा नैस्यार्दिभिर्यत्र नोच्यते स्वविवक्षितम वैजते चेष्ट्यविदम विकृतम तद्वि दुर्बुधा। भरत के नाट्यशास्त्र में भी विकृत नाम मिलता है। हिंदी के कुछ श्रृंगार युगीन नृत्य ग्रंथों में भी यही नाम रखा गया है। नवीन कल्पना के लिए केशवदास ने क्षमा प्रार्थना भी की है। राधा राधा रमन के कहे जथा मति हाओ ढीठई केशवदास की क्षमियो कवि कविराओ। सप्तम प्रभाव में खंडता का लक्षण भिन्न है। श्रृंगार तिलक का लक्षण यह है कुतश्चितनागतौ यस्या उचिते वासके प्रिय तदनागम संतप्ता खंडता सा मता यथा। खंडिता का अर्थ होता है परिस्थितिवश प्रिय पर से जिसके अपनत्व का अभिमान खंडित हो। यहाँ प्रिय के न आने से जिसको संताप हो वह खंडिता कही गई है। हिंदी में खंडिता का जो लक्षण चला वह रसमंजरी के अनुगमन पर अन्योपभोग चिन्हित प्रात रागच्छति पतिर्यस्या सा खंडिता केशव का लक्षण यो है। आवन कही आवे नहीं आवे प्रीतम पात जाके घर सो खंडिता कहे जो बहुविधि बात। यहाँ केशव ने आने का कहकर ना आए लिखकर एक और स्थिति स्पष्ट की तो दूसरी ओर अन्योपभोग चिन्हित को छोड़ दिया। उसे कहे जो बहुविधि बात के भीतर रखा है। इसका कारण उनके द्वारा गृहित प्रच्छन्न प्रकाश भेद है। उन्होंने प्रच्छन्न में तो भोग चिन्हों का उल्लेख नहीं किया पर प्रकाश में उनका संकेत किया है। हित तय कह मद मदन तय पिय पिय मिले जुजाई सौ कहिए अभिसारिका बरनी त्रिविध बनाई। प्रेम मद और मदन काम से प्रेरित होकर जो प्रिय के पास जाए इसमें के दो विशेषण तो नाट्यशास्त्र में मिल जाते हैं मद और मदन। प्रेम नूतन कल्पना है। हित्वा लज्जाम समाकृष्टा मदनम मदनेन या अभिसार्यते कांतम च भवेदभिसारिका। अष्टम प्रभाव में जड़ता का लक्षण विचारणीय है। श्रृंगार तिलक में उसका लक्षण यह है अकांडे यत्र हुंकारो दृष्टि स्तब्धा गतास्मृति श्वासा समाधिका कार्स्य जड़तेयम मता यथा। पर केशव ने यह लक्षण किया है भूली जाई सुधि बुधि जहाँ सुख दुख होई समान तासो जड़ता कहत है केशव दास सुजान। इसमें गता स्मृति का भूली जाई सुधि बुधि ठीक है पर सुख दुख होई समान यह कदाचित इष्टानिष्टा परिज्ञान से संबद्ध है क्योंकि सुख अनुकूल वेदनीय होता है और दुख प्रतिकूल वेदनीय। उज्ज्वल नीलमणि में जड़िमा का लक्षण यह है इष्टानिष्ट परिज्ञानम यत्र प्रश्नेस्व नुत्रम दर्शन श्रवणा भावो जड़िमा सो अभिधीयते अत्राकांडे अपि हुंकार स्तंभ स्वास्थ्य भ्रमाधय। इस प्रकार के अंत में केशव ने अनुभव की मार्मिक स्थिति का उल्लेख किया है। इसके अनुसार आदर लोभ तथा अतिसंग से साधुओं के चित भी चंचल हो जाते हैं। नवम प्रकाश में केशव ने मान के प्रसंग में नायक के मान का भी विवेचन किया है। यह अंक श्रृंगार तिलक में नहीं है। साहित्य दर्पण में स्थिति स्पष्ट है मान कोप स तु द्वैधा प्रणयेस्यार समुद्र भव द्वय प्रणया मान स्यात्य प्रमोदे सुमहत्यपि। उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है स्नेहम बिना भयम न स्यानेस्या च प्रणयम बिना तस्मान प्रकारो यम द्वय प्रेम प्रकाशक। दसम प्रभाव में मानव नोदन के साधन बताए गए हैं। इनमें एक दान भी है। केशव ने इसके प्रसंग में भामित विचार की चर्चा की है। दान तो वैश्या को भी दिया जाता है फिर अन्यों से भेद किस प्रकार किया जाएगा उनका निर्णय है। जहाँ लोभते दान लय छाड़े माननी मान वार बधु के लक्ष्य नहीं चाबे तबही प्रमाण। इसका अर्थ है कि जहाँ लोभ न हो वहीं दान उपाय ठीक होगा। इसी प्रकार प्रणति में अपराध या काम का हेतु होना आवश्यक है। बिना इसके प्रणति रस के लिए हानिकारक होती है। मान छूटने की सहज या सरल स्थितियां भी होती हैं। इनका उल्लेख निम्नलिखित दोहे में है देश काल बुधि वचन ते कल धुनि कोमल गान शोभा शुभ सुगंध सौगंध ते सुखी छूटत मान। उज्ज्वल नीलमणि में भी देश कालादिक का उल्लेख है देश काल बले नैव मुरली श्रवणिन च विनाप्युपायम मानो सोलियते वज्र सुभ्रवाम। एकादश प्रभाव में करुण विरह का निरूपण केशव ने श्रृंगार तिलक से भिन्न किया है। श्रृंगार तिलक में वही लक्षण है जो शास्त्रीय ग्रंथों में अन्यत्र मिलता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण कादंबरी में महाश्वेता का विरह है। श्रृंगार तिलक में लक्षण यो है, यत्रैक्षिमिन वपन्ने अन्यो मृत कल्पो अपि तद्गतम नायक प्रलपित प्रेमणा करुणो असौ स्मृतो यथा। पर केशव यो लिखते हैं, छुटी जा से केशव जहां सुख कै सबै उपाय करुणा रस उपजात तहां आपुन तय अकुलाय। केशव इसके वर्णन के पक्ष में भी नहीं है। उनका कहना है, सुख में दुख क्यों बरनिय यह वर्णत व्यवहार तदपि प्रसंग ही पाई कछु वर्णत मति अनुसार। इसका वर्णन रूप गोस्वामी ने इसलिए छोड़ दिया है कि वे इसे भी एक प्रकार का प्रवास विरह ही मानते हैं। विप्रलंब परम केचित करुणा मिधि मुचिरे स प्रवास विशेष त्वान्ने वात्र पृथ्गिरतः। कालीयदा में प्रवेश करना आदि को वे करुण विप्रलंब के अंतर्गत मानते हैं। केशव ने मति अनुसार कुछ नया विचार दिया है। यह अवश्य विचारणीय है कि कालिय दह प्रवेश आदि में करुण रस माना जाए या करुण विप्रलंब। शास्त्रीय व्यवस्था इतनी ही है कि जब तक प्रिय मिलन की आशा बनी है तब तक विप्रलंब है। जहां नैराश्य आया वह करुण हो जाएगा। केशव ने संदिग्ध स्थिति का परित्याग कर करुण विरह का वर्णन इस प्रकार कर दिया है कि यदि नायिका को विरहावस्था में कोई बाधक स्थिति क्लेशकारिणी उत्पन्न हो जाए तो करुण विप्रलंब माना चाहिए। यदि प्रिया के पास सखी जाए और उससे मिलकर वहीं रह जाए और विरहणी को उसकी ऐसी करतूत का पता चल जाए तो वह करुण विरह है। प्रच्छन्न करुण विरह का उदाहरण तो ठीक बन गया है, पर प्रकाश करुण विरह में प्रवास विरह ही है। जब विरह में कोई बाधक स्थिति भी आलंबन हो जाती है तब करुण विरह होता है। कोई बाधक स्थिति उद्दीपन रहती है तो वहां विषाद संचारी ही भर है। इसी से इनका प्रकाश करुण विरह ठीक उदाहरण नहीं जान पड़ता। उदाहरण विरह के अंतर्गत इन्होंने भय विभ्रम का वर्णन भी किया है जिसका कोई लक्षण नहीं किया है। स्वरूप से स्थिति यह जान पड़ती है कि जहाँ वियोग में संयोग की दुखद वस्तु में दुखदायिनी हो जाती है उसके वर्णन को यह भय विभ्रम कहना चाहते हैं। सरदार ने ऐसे दुख की खतियानी सात खातों में की है, नींद सेज सुमनो सभा संगीत साली सुगंध सात वियोगिन को करत महा विरह तय गंध। केशव ने केवल निद्रा के उदाहरण दिए हैं, इसके अतिरिक्त पत्री के उदाहरण भी इसी के साथ दिए गए हैं। द्वादश प्रभाव में सखी वर्णन श्रृंगार तिलक के अनुसार ही है। इसमें कुछ केशव ने और बढ़ाए हैं। इन्हें सखी कहा जाए या दूती, दास दूती के अंतर्गत ही इनमें से बहुतों को रखते हैं। सखी और दूती में स्वरूप भेद उनके स्वातंत्र और पारतंत्र के आधार पर ही है। सखी में फिर भी कुछ स्वाधीनता होती है, उसकी प्रतिष्ठा विशेष होती है। हिंदी में परंपरा सखी और दूती के कर्मों का कुछ विभाजन भी कर दिया गया है। विरह निवेदन दूती का कार्य हो गया है। श्रेयोदश प्रभाव में सखी के जो कर्म बताए गए हैं उनमें कुछ क्रुद्ध भी हो सकती है, पर दूती की क्या मजाल की वह रोष कर सके। ऐसे ही संदेश आदि भी दूती के कर्म है। सखी की स्थिति कुछ अधिक परिष्कृत है, उसका सुसंस्कृत होना आवश्यक है। इसलिए जिसको सखी कहा गया है वे सब सखी के योग्य नहीं जान पड़ती। चतुर्दश प्रभाव में अन्य रसों का विवेचन है। हास्य रस के परिहास भेद की चर्चा पहले की जा चुकी है। रसों के वर्ण का उल्लेख भी केशव ने किया है जो श्रृंगार तिलक में नहीं है। देवता का उल्लेख फिर भी नहीं है। हास्य रस में वर्ण का भी उल्लेख छूट गया है। करुण रस का लक्षण श्रृंगार तिलक से भिन्न है। वहां लक्षण है सुखात्मा करुणोज्ञ प्रिय भृत्य धन धनक्षात। यहाँ है प्रिय के विप्रिय करण तय आनी करुण रस होत। केशव ने अन्य रसों को भी राधा कृष्ण से ही संबद्ध रखना चाहा है, इसी से इस प्रकार का लक्षण उन्हें करना पड़ा। ऐसा उदाहरणों से स्पष्ट है। अन्य रसों की भी यही स्थिति है। इसका परिणाम यह हुआ कि रसों का स्वरूप पूरा स्पष्ट नहीं हो सका है। उनके स्थायी भाव श्रृंगार के संचारी भाव होकर आए हैं। समरस या शांत रस के उदाहरणों में तीसरा ठीक है। पंचदश प्रभाव में वृत्तियों का वर्णन है। इनमें सात्वती या सात्विकी वृत्ति का लक्षण श्रृंगार तिलक से कुछ भिन्न है। इनमें रौद्र के स्थान पर श्रृंगार है, वैसा ही पाठ प्राचीन पोथियों में है। अन्यत्र अद्भुत वीर श्रृंगार रस के स्थान पर अद्भुत रुद्र वीर रस पाठ भी मिलता है जो उससे ठीक मिल जाता है। अंतिम सोडस प्रभाव में अंदरस वर्णन है, इसमें नीरस लक्षण कुछ भिन्न रखा गया है। श्रृंगार तिलक में नीरस का लक्षण दो बार कथित है। पहले के संबंध में टिप्पणी है कि कुछ पुस्तकों में यह नहीं मिलता। केशव ने दूसरे से कुछ मिलता जुलता लक्षण किया है। अंत में नित्य रस विरोध का विचार किया है और रसोत्पत्ति भी नाट्यशास्त्र के अनुसार दे दी है। यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रसिक प्रिया शीर्षक समाप्त होता है।